اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو ہم تین درجے پڑھ رہے تھے حجاب کے. پہلا درجہ تھا اشخاص بالبیوت، یعنی گھروں میں حجاب کرنا، مطلب گھروں کے ذریعے سے حجاب کرنا، یا بالبیت، حجاب بالبیت بھی جس کو کہتے ہیں. اس کا مطلب کیا تھا کہ دیوار کی اوٹ میں، یا خیمے کے پیچھے، یا کسی لٹکتی ہوئی چادر وغیرہ کے پیچھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پورا کا پورا وجود ہی جو ہے وہ چھپا ہوا ہو. تو یہ اصل مقصود فرمایا. اور صحابیات کی بہت ساری مثالیں دیکھ کر کے بھی یہ بتایا کہ صحابیات کا پردہ بھی اسی طریقے سے تھا. حضرت زینب رضی اللہ عنہا جس وقت حکم نازل ہوا، اسی وقت نبی علیہ السلام نے زینب رضی اللہ عنہا کو پردے کے پیچھے کر دیا، ان کے اوپر برقع نہیں ڈالا، چادر نہیں ڈالی. اسی طریقے سے دوسرے بھی واقعات آئے، اور حتیٰ کہ جو واقعہ اف تھا تو اس کے اندر بھی یہی، یہ جو شغدف یا ہودج کا جو کانسیپٹ تھا زمانے میں، وہ بھی یہی تھا کہ گھر کے اندر ہی، یعنی ایک گھر نما چیز کے اندر رہیں. ٹھیک ہے، تو یہ امید ہے کہ کلیئر ہوگا. پھر دوسرا درجہ حجاب بالبرقع، تو یہ ہم نے آج پڑھنا ہے کہ ضرورت کے مواقع میں جب عورت کو گھر سے باہر جانا پڑے، اس وقت کسی برقع یا لمبی چادر کو سر سے پیر تک اوڑھ کر نکلنے کا حکم ہے جس میں بدن کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو. یہ سورہ احزاب کی اس آیت سے ثابت ہے جو آگے آ رہی ہے، یعنی یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج مطہرات اور بنات طاہرات کو اور عام مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیں کہ اپنی جلباب استعمال کریں. تو جلباب اس لمبی چادر کو کہتے ہیں جس میں عورت سر سے پیر تک مستور ہو جائے. ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس سے استعمال جلباب کی صورت یہ نقل کی ہے کہ عورت سر سے پاؤں تک اس میں لپٹی ہوئی ہو، اور چہرہ اور ناک بھی اس سے مستور ہو، صرف ایک آنکھ راستہ دیکھنے کے لیے کھلی ہو. اس آیت کی پوری تفسیر آگے آتی ہے. یہاں صرف یہ بتانا منظور ہے کہ ضرورت کے وقت جب عورت گھر سے نکلنے پر مجبور ہو تو اس کو پردے کا یہ درجہ اختیار کرنا ضروری ہے کہ جلباب وغیرہ میں سر سے پاؤں تک مستور ہو، اور چہرہ بھی بجز ایک آنکھ کے چھپا ہوا ہو. ٹھیک، یہ صورت بھی باتفاق فقہاء امت ضرورت کے وقت جائز ہے، مگر احادیث صحیحہ میں اس صورت کے اختیار کرنے پر بھی چند پابندیاں عائد کی ہیں کہ خوشبو نہ لگائی ہوئی ہو، بجنے والا کوئی زیور نہ پہنا ہو، اور راستے کے کنارے پر چلے، اور مردوں کے ہجوم میں داخل نہ ہو وغیرہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں میرے خیال ہم نے کل کافی تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ جو ایک آنکھ اور دو آنکھ والا مسئلہ ہے تو اس کو پھر کیسے ویو کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے اوپر ایک بات یاد آئی کہ ایک دفعہ یاجز اور اس کی اہلیہ حضرت جی سے جب ملاقات کر رہے تھے، رابطہ ملاقات تھی، مشورہ تھا، تو اس میں حضرت جی نے اپنے گھر والوں کے بارے میں بتایا، یعنی اماں جان کے بارے میں بتایا کہ جس وقت اماں جان سے حضرت جی کی شادی ہوئی، ٹھیک ہے، تو اب جب یہ لوگ کہیں باہر نکلتے تھے نا تو حضرت جی تھوڑا سا آگے چل رہے ہوتے تھے، یہ پیچھے چل رہی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو ہر تھوڑی دیر کے بعد اماں جان کو ٹھوکر لگ رہی ہے اور وہ گر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو بڑا، یعنی ایک دو بار تو اگنور کیا، لیکن جب بار بار اس طرح سے ہوا تو پھر حضرت جی نے اماں جان سے پوچھا کہ کیا، کیوں آپ کو ٹھوکر لگ رہی ہے، چوٹ تو نہیں آ گئی اس سے، تو آپ کو کوئی بڑی تکلیف ہو سکتی ہے. تو پوچھنے پر پتہ لگا کہ اماں جان جو نقاب اوڑھی ہوئی تھی نا، اس کے اوپر انہوں نے یعنی جس طرح اوپر سے چادر ڈال لیتے ہیں، تو وہ جو انہوں نے ڈالی ہوئی تھی نا، وہ آٹھ تہیں ڈالی ہوئی تھی، آٹھ، ٹھیک ہے، نمبر 8، آٹھ تہیں ڈالی ہوئی تھی انہوں نے. تو جو आठ तहें डाली हुई थी तो उनको कुछ नजर नहीं आ रहा था आगे, तो इस वजह से वो ठोकर खा रही थी और ठोकर लग करके वो गिर रही थी। तो आदर जी ने फिर उनको समझाया कि भाई ये ऐसे ना करें, इससे तो आपको यानी शदीद हर्ज का खतरा है, तकलीफ का खतरा है, तो आप इसको जो है ना वो कम कर दें। तो मुझे याद पड़ता है कि शायद उसको फिर कम करवा के ना दो तहें करवाया था। ठीक है, तो ये उस जमाने की बात है जब कदर जी की शादी हुई थी, जो कि आज से यकीनन तकरीबन उसको 35 साल से ज्यादा, 35 तकरीबन साल हो चुके हैं, क्योंकि जो बड़े बेटे हैं उनकी उम्र तकरीबन 35 साल है इस वक्त। ठीक है, 40 से तो वो छोटे हैं, लेकिन 30-35 के दरमियान होंगे वो। तो अब अम्मा जान को देखें तो वो जो निकाब पहनती हैं, तो वो दो आंखों के खुले का खोला वाला निकाब होता है। ठीक है, तो अब ये है जो इस जमाने के उलमा और मशायख हैं, तो उनकी जो इत्तेबा की बात हुई थी कल, तो उसके तहत आज भी जो है। अच्छा, अगर कोई करना चाहे किसी और वजह से कि मैं तकवा, उनका है एक मिजाज। अच्छा, ये तकवा वाला मसला भी जो है ना, ये भी थोड़ा सा समझना पड़ता है। ठीक है, अब एक औरत एक 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 होता है जी कि किसी अंदर की जो उसकी कैफियत है उसके तहत वो तकवा इख्तियार करना चाहे। ठीक है ना, तो ये ना इट्स वेरी लाइक, ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। ठीक है, कि जी बंदा तकवा इख्तियार कर रहा है तो अब तकवे के अंदर कितना आगे जाना चाहता है। ठीक है, तो इसमें भी ना यानी आपको ख्याल रखना पड़ता है कि आप तकवा जो इख्तियार कर रहे हैं तो उस तकवे में कहीं कोई मिलावट तो नहीं हो गई है। ठीक है, किसी किस्म की कोई मिलावट तो नहीं हो गई है। इस वजह से तकवा जो है ना, इसमें यानी जो इंसान तकवा इख्तियार करने की कोशिश करता है ना, तो इसमें भी शेख की रहनुमाई जो होती है, एक्सक्यूज मी, जो शेख की रहनुमाई होती है वो मदद करती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर किसी क्लास के अंदर, आपकी क्लास नहीं थी लेकिन कोई और क्लास थी, उसके अंदर कुछ बात हुई कि जी जो फेस क्रीम्स वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, तो फेस क्रीम्स के अंदर जो है वो इस तरह के इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करना जो है ना, यानी इस तरह के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि यानी जायज जराए से हासिल नहीं किए गए होते। ठीक है ना, तो उन इंग्रेडिएंट्स के बारे में फतवा ये है कि उनको इस्तेमाल करना जायज है। ठीक है, फतवा ये है कि इस्तेमाल करना जायज है। ठीक है, अब ये क्लास के अंदर टीचर ने बता दिया। ठीक है, तो अब उस क्लास में किसी स्टूडेंट ने फिर इस आर्टिस्ट से सवाल किया कि जी ये हमें क्लास में बताया है, तो अब हमारे लिए यानी क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर ये मटेरियल है। ठीक है ना, यानी ये सब्सटेंस है उसके अंदर, तो अब हमें उसको छोड़ देना चाहिए कि हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो अब उनसे थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन हुई कि मतलब उनको बता दिया कि जी ऐसा ऐसा है, इसमें ये चीज जायज है, ये चीज नाजायज है। तो बिला आखिर ना उन्होंने आखिरी सवाल ये किया कि जी फतवे में तो ये चीज जायज है तो तकवे में क्या करना चाहिए। ठीक है, अब ये जो उन्होंने सवाल किया ना कि फतवे में तो ये चीज जायज है लेकिन तकवे में क्या करना चाहिए, अब चूंकि उनके साथ एक इस्लाही ताल्लुक है और याजिज यानी वो कुछ अरसे से मशवरे कर रही हैं, अपने अहवाल वगैरह बयान कर रही हैं, उन्होंने अपने घर के अहवाल बयान किए हैं, अपने एक्सटेंडेड फैमिली के अहवाल बयान किए हैं, ठीक है, अपने शौहर के मामले के बारे में बताया है, हत्ता कि अपने बच्चों के बारे में बताया है, तो अच्छा खासा एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू जितना मिल सकता है रिटन इंफॉर्मेशन के जरिए से उतना इस आर्टिस्ट के पास है उनके बारे में। ठीक है, तो अब जो उन्होंने ये सवाल किया ना कि फतवे में तो ये चीज जायज है लेकिन तकवा क्या है, ठीक है, तो आपको पता है मैंने क्या जवाब दिया, उनको क्या जवाब दिया, लेकिन ये जवाब उनके लिए था, उनके अहवाल के हिसाब से था। ठीक है, उनको इस आर्टिस्ट ने ये जवाब दिया कि तकवा इस केस में आपके लिए तकवा मुफ्ती हजरात के फतवा को फॉलो करने में, समझ रही हैं क्या जवाब दिया, कि तकवा आपके केस में मुफ्ती हजरात के फतवा को फॉलो करने में। ठीक है, लेकिन किताब के अंदर तो आपको इस तरह से नहीं मिलेगा,
ये किताब के अंदर तो बस ये लिखा होता है कि जी फतवा में ये चीज जायज है और तकवा ये है कि इनको भी छोड़ दिया जाए, ठीक है ना, किताब में तो ऐसे लिखा होता है। और इसी तरीके से जब उमूमी बयान हो रहा होता है तो उमूमी बयान में भी यही चीज बताई जाती है कि फतवा तो फतवा में तो ये चीज जायज है लेकिन तकवा जो है वो इसको भी छोड़ देने में है, ठीक है। लेकिन किसी के पर्टिकुलर अहवाल को मालूम करने के बाद ये हुक्म बदल भी सकता है। और वो हुक्म किस तरह से बदल सकता है कि भाई इनका मामला ऐसा है कि इनके लिए इस वक्त दौरे हाजिर के उलमा और मुफ्ती हजरात को फॉलो करना ये ज्यादा जरूरी है इनकी इसलाह के लिए, ठीक है ना, ये इनके नफ्स की इसलाह के लिए, इनके दिल की सफाई के लिए ये ज्यादा जरूरी है कि बजाय इसके के ये उस ब्यूटी प्रोडक्ट को छोड़ दें, इसके बजाय ज्यादा इनकी के लिए फायदेमंद ये है कि ये मुफ्ती हजरात के फतवे को फॉलो करें, ठीक है, ताकि इससे इसलाह होगी, इसलिए इससे इनकी असल इसलाह होगी। और जब इसलाह होगी ना तो फिर इनके लिए तकवा इख्तियार करना ज्यादा मुफीद होगा, फायदेमंद होगा। और अगर इसलाह ना हुई यानी नफ्स जो है वो कमजोर ना पड़ा बल्कि उसके बगैर ही उन्होंने ये तकवे वाली चीजों के ऊपर अमल करना शुरू कर दिया किताबों में पढ़ करके या क्लास में सुन करके, तो फिर इनका नफ्स जो है ना ये कमजोर नहीं होगा बल्कि ये और ज्यादा कवी होगा। और ये जब कवी होगा तो फिर किसी ना किसी वक्त इसने पर पुर्जे निकालने हैं, किसी ना किसी वक्त इसने फिर तकवा के जोम में, ठीक है, तकवा के जोम में आकर के फिर इसने अपने तकवा का शिकार जो है फिर उलमा को ही बनाना है, मशायख को बनाना है, ठीक है ना, मशायख को तकवा का शिकार करना है इसने, समझ रहे इस बात को, तकवा का शिकार करना है, ठीक है। तो इस तरह से चलता है। चलें आप क्या लिख रहे हैं कि ग्लव्स और सॉक्स के बारे में बहुत रगबत दिल में आती है लेकिन ख्याल आता है उजब का बायस ना हो। हाँ, तो इसका भी यही जवाब है कि ये भी जो है पूछ लेना चाहिए कि मैं ग्लव्स और सॉक्स का इस्तेमाल करूं या ना करूं, ठीक है। तकवा में मिलावट में कौन सी बातें शामिल हो सकती हैं? तकवा में मिलावट में यही बातें शामिल होती हैं कि इंसान तकवा करते करते ना जो शैतान उसके अंदर मिलावट करता है तो उस मिलावट से क्या होता है कि वो फिर जो दीन के जो मुक्तदा लोग होते हैं यानी जिनकी इक्तदा करनी होती है आपने दीन में, वो अपने आप को उनसे कंपेयर करना शुरू हो जाता है, ठीक। और हत्ता के एक वक्त आता है जिसके अंदर उसको उनके अंदर कोई ना कोई खिलाफ तकवा बातें नजर आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, खिलाफ तकवा बातें नजर आनी शुरू हो जाती हैं, फिर वो उनके ऊपर एतराज करना शुरू कर दे, ठीक। और ये एतराज जो होता है फिर उसके लिए रूहानी तौर पर जानलेवा बाइस बन जाता है, जानलेवा बन जाता है, ठीक है। तो यही मिलावट होती है कि उजुब आ जाता है और उजुब की वजह से फिर ये कंपैरिजन में तब्दील हो जाता है और कंपैरिजन जो होता है ना उसको तकब्बुर कहते हैं, ठीक है। और ये कंपैरिजन जो है ना पहले तो वो अपने बराबर के लोगों के साथ करता है जिसको कहते हैं पीर भाइयों के साथ, पीर बहनों के साथ, ठीक है ना, फिर ये बढ़ते बढ़ते मशाइख तक पहुंचता है जिसके बारे में बाकायदा हजरत मुजद्दद अलफ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह के मकतूबात से नकल किया है, क्योंकि वो पोस्ट मुझे आप लोगों को भेजनी भी थी लेकिन अभी तक तौफीक नहीं मिली। खैर, हजरत ने यही तरतीब बताई है कि पहले अपने पीर भाइयों पर एतराज करता है, फिर उसके बाद सिलसिले में जो खुलफा होते हैं खुलफा पर एतराज करता है, फिर उसके बाद शेख पर एतराज करना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जब शेख पर एतराज शुरू करना शुरू कर देता है ना तो फिर इसकी तनज़ुली यानी कंफर्म हो जाती है, फिर इसका बेड़ा गर्क हो जाता है और फिर उसके बाद ये, ठीक है। तो यही इसका यानी बगैर पूछे तकवा इख्तियार करने से यही होता है, इसका मतलब इस्लाही ताल्लुक के बगैर तकवा भी खालिस नहीं होगा। भाई नबी के बगैर जब सहाबा का दीन नहीं बन सका, ठीक है, तो फिर ये हमारा दीन कैसे बनता है ये तो ना समझ में आने वाली बात है ना, ठीक है। तो फिर ये सब तो ये तसव्वुफ को एक साइंस बना लेना और तसव्वुफ को एक अलग ही थ्योरी बना लेना ये सब तो है ही नहीं ना भाई, ये तो दीन है, सिंपल दीन है, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम के बगैर सहाबा का नहीं चल सका तो फिर हमारा कैसे चलेगा, तो ये तो कोई अलग चीज नहीं है, ये दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द दीन। आजकल उर्फ में तो ऐसा नहीं है, वो उर्फ में ना होने से क्या होता है। उर्फ तो ये लोगों की समझ है ना, ये अवाम नास की ऐसी समझ है, लेकिन दीन का उर्फ तो सुन्नत ही है ना। तो सुन्नत को आपने दीन के उर्फ से निकाल दिया, तो उसका मतलब ये को थोड़ी है कि जी अब सुन्नत के बगैर ही दीन एक नया दीन बन गया, बगैर दीन बगैर सुन्नत, ये कोई नया दीन तो नहीं बना लिया ना हमने। तो भाई उसके अंदर एक नुक्स है, अब उस नुक्स को दूर करने की कोशिश करें बजाय इसके कि नाकिस को उर्फ बना दें, राइट। अब क्या करें इंसान। एनीवे, जिसके पास अल्लाह ताला ने मौके दिए हैं तो उसको सुन्नत पर अमल करना चाहिए, और दूसरे जिनके पास अल्लाह ने मौके नहीं दिए, यानी मशायख नहीं मिले, उनको सोबत नहीं मिली, तो उनके बारे में यानी सर्फ नजर करना चाहिए, और उनके बारे में यही गुमान करना चाहिए कि भाई इनको अल्लाह ताला ने मौका नहीं दिया, तो इस वजह से बेचारे इससे महरूम है। तो ये हो गया दूसरा दर्जा, हिजाब बिल बुर्का। अच्छा, अब तीसरा दर्जा पर्दा शरी का, जिसमें फुकहा का इख्तिलाफ है, वो ये है कि सर से पैर तक सारा बदन मस्तूर हो, मगर चेहरा और हथेलियां खुली हुई हो, जिन हजरात ने इल्ला मा जहरा की तफसीर। अच्छा, एक बात बस इसी को बस पैचअप करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए एक बात सुन लें, कि जैसे ये बुरके वाली बात है, ठीक है ना, पाँव और हाथ कवर करने की वाली बात है, ठीक है, यानी ग्लव्स पहनना और सॉक्स पहनना, ठीक है। तो इसमें या तो शेख से पूछ लें, ठीक है ना, शेख आपको बता दे कि भाई आप करें, ठीक है, तो फिर आप करें, फिर तो कवर हो गया ना सारा मसला ही कवर हो गया। लेकिन अगर शेख से नहीं पूछ पा रहे हैं, या शेख के साथ ऐसा राबता ही नहीं हो पा रहा है, तो फिर ये काम करने से पहले अपने दिल को बिल्कुल क्लियर कर लें, बिल्कुल 100% अपने आप को कन्विंस कर दें कि जो नहीं पहनते हैं सॉक्स एंड ग्लव्स, उनके बारे में मैंने बदगुमान नहीं होना है, नो मैटर व्हाट, ठीक है, जो नहीं पहनते हैं उनके बारे में मैंने बदगुमान नहीं होना है, नो मैटर व्हाट, ठीक है। जब आप बिल्कुल कन्विंस हो गए ना अपने बारे में कि हाँ मैंने बिल्कुल 100% अपने आप को क्लियर कर लिया है, इरादा कर लिया है, मैंने अपने जहन को बना लिया है, अब आप बगैर पूछ करके भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जायज तरीका है तो ना, किताब में तो लिखा हुआ है ना, उलमा ने लिखा हुआ है ना कि हाँ ये है इसके अंदर शामिल, ठीक है। तो अब द ओनली थिंग दैट स्टॉपिंग यू शुड बी कि भाई मैं उजब और तकबर में मुबतला ना हो जाऊं। लेकिन अगर उजब और तकबर का आपने इलाज कर लिया, ठीक है ना, ऐसी एक किलर दे दी, किलर मेडिसिन दे दी कि जी अब ये इस मामले के अंदर उजब तकबर का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है, तो फिर आप करें इस काम को, राइट। लेकिन ये जरा मुश्किल काम है, बिकॉज इसके अंदर फिर वो शैतान की का अमल दखल भी जारी रहता है, और हम इतने तो यानी ऐसे नहीं बने कि जी आज इरादा कर लिया तो अब जो सारी जिंदगी उस इरादे के ऊपर कायम रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इतनी पुख्तगी हमारे अंदर नहीं है। तो इस वजह से आसान रास्ता यही है कि शेख से पूछ लें, ठीक है। तीसरा दर्जा पर्दा शरी का, जिसमें फुकहा का इख्तलाफ है, वो यह कि सर से पैर तक का सारा बदन मस्तूर हो, मगर चेहरा और हथेलियां खुली हुई हो, जिन हजरात ने इल्ला मा ज़हरा की तफसीर चेहरे और हथेलियों से की है, उनके नजदीक क्योंकि चेहरा और हथेलियां हिजाब से मुस्तस्ना हो गई, इसलिए उनको खुला रखना जायज हो गया, ठीक है। यानी इसका लॉजिकल कंक्लूजन ये होगा कि खुला रखना जायज हो गया। और जिन हजरात ने मा ज़हरा से बुरका जिलबाब वगैरह मुराद ली है, ठीक है, तो वो उसको नाजायज कहते हैं। यानी कितनी सादा सी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। मा ज़हरा यानी जो चीज जाहिर होती है वो क्या है, ठीक है ना, चेहरा और हथेलियां, बदन यानी इंसान के बदन में चेहरा और हथेलियां जाहिर वाली चीजें हैं, तो फिर वो खोलना मुराद होती है, अल्लाह ताला ने उसको खोलने की इजाजत दी। और जिन्होंने कहा कि नहीं, बल्कि जो कपड़ा आप पहने हुए हैं वो उस कपड़े का जो बाहर वाला हिस्सा है वो मा ज़हरा मिन्हा है, ठीक है, तो फिर उनके नजदीक जो है वो हथेलियां और चेहरा भी जो है वो इसके अंदर शामिल हो गया, ठीक है, यानी हिजाब में शामिल हो गया, ओके। तो जिन्होंने जायज कहा है उनके नजदीक भी ये शर्त है कि फितने का खतरा ना हो, मगर, ठीक है, अब ये मगर जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मगर चूंकि औरत की जीनत का सारा मरकज उसका चेहरा है, इसलिए उसको खोलने में फितने का खतरा ना होना शाज और नादिर है, इसलिए अंजाम कार आम हालात में इनके नजदीक भी चेहरा वगैरह खोलना जायज नहीं है, ठीक है। यानी आम हालात क्या है कि जी फितने का खतरा होता है, तो इस वजह से इवन उन लोगों के नजदीक, उन उलमा फुकाहा के नजदीक भी चेहरा का खोलना जायज नहीं है, ठीक है। अब औरत, दो औरतों के दरमियान जो एक मेजर फर्क होता है वो बॉडी शेप्स का तो नहीं होता ना, वो तो सेम होते हैं, लेकिन जो मेजर फर्क होता है दो इंसानों के दरमियान या दो औरतों के दरमियान, ठीक है ना, वो तो चेहरे ही तो होता है ना, तो चेहरा ही तो होता है जिसकी बेसिस पर आप आइडेंटिफाई करते हैं किसी शख्स को, राइट। कोई शख्स जो आपको याद रहता है तो उस याद के अंदर उसका क्या चीज याद रहती है, चेहरा याद रहता है, चेहरा इज द मरकज, जब भी तो उन्होंने मरकज का लफ्ज इस्तेमाल किया, ठीक है। आइम्मा अरबा में से इमाम मालिक, शाफी, अहमद इब्न हम्बल, तीन इमामों ने तो पहला मजहब इख्तियार करके चेहरा चेहरा और हथेलियां खोलने की मुतलक इजाजत नहीं दी। ठीक है, ख्वाह फितने का खौफ हो या ना हो, या पहले मजहब से इनकी मुराद यही है कि जिन्होंने के माजहरा में जो है ना बुरका और जिलबाब मुराद दिया, ठीक है, तो उन्होंने यानी रिगार्डलेस चेहरा और हथेलियां खोलने की इजाजत नहीं दी। अच्छा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने अगरचे दूसरा मसलक इख्तियार फरमाया मगर खौफ फितने का ना होना शर्त करार दिया, और चूंकि आदतन ये शर्त मफकूद है, ठीक है ना। अब ये मुफ्ती साहब लिख रहे हैं कि आदतन यानी एक इंसान के अल्लाह ताला ने जैसे कि मिजाज बनाया है, तो आदतन ये शर्त जो है ना ये होना बड़ा मुश्किल काम है कि फितने का खौफ ना हो। इसलिए फुकहा हनफिया ने भी गैर महरमों के सामने चेहरा और हथेलियां खोलने की इजाजत नहीं दी है, ठीक है। तो चूंकि गैर महरम के साथ जो है वो ये फितना का ना होना ये एक बड़ी स्पेशल यानी बड़ी बड़ा मफकूद मामला है ऐसा, तो इस वजह से। अच्छा, मजाहिब आयमा अरबा की रिवायतें इन मजाहिब की मुस्तनद किताबों के हवाले से रिसाला तफसीलुल खिताब जुज अहकामुल कुरान में मुफस्सल बयान कर दी गई हैं, ठीक है। यानी उन्होंने एग्जैक्टली क्या क्या कहा है तो ये सब कुछ इस रिसाले में बयान कर दिया लेते हैं। हनफिया का असल मजहब चूंकि चेहरे और हथेलियों को हिजाब से मुस्तस्ना होने का है, इसलिए इस जगह मजहब हनफिया की चंद रिवायात नकल की जाती हैं जिनमें बवजह खौफ फितना ममानियत करने का हुक्म मजकूर है, ठीक है। जैसे कि फतुल कदीर की रिवायत है, एलम अन्नहुला मुलाजमता, ठीक है, इसका तर्जुमा पढ़ लेते हैं कि समझ लो कि किसी उज्व के सतर में दाखिल ना होने और उसकी तरफ नजर के जायज होने में कोई तलाजुम नहीं है, क्योंकि नजर का जवाज तो कि नजर का जवाज तो इस पर मौकूफ है कि शहवत का खतरा ना हो, हालांकि वो उजर सतर में दाखिल नहीं, इसी वजह से यानी वो उजर सतर में दाखिल नहीं है, लेकिन नजर का जायज होना जो है ना ये उसी वक्त होता है कि जबकि शहवत का खतरा ना हो, ठीक है। इसी वजह से अजनबी औरत का चेहरा या किसी बेरेश लड़के के चेहरे की तरफ नजर करना हराम है जबकि शहवत पैदा होने में शक हो, हालांकि चेहरा सतर में दाखिल नहीं है, ठीक है। तो साहिबे फतहुल कदीर ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक को जिक्र किया कि चेहरा जो है वो यानी सतर में दाखिल नहीं है, ठीक है। अब ये तो पहले भी डिस्कस हो चुका ना कि अगर सतर में दाखिल होता तो चेहरा खोल करके नमाज पढ़ने से नमाज ही नहीं होती, ठीक है। तो चेहरा तो सतर में दाखिल नहीं है, लेकिन चेहरे की तरफ नजर करना जो है वो इसलिए ममनू है यानी हराम है कि शहवत पैदा होने का इसमें खतरा है, शक है, ठीक है। तो अब ये साहिब फतुल कदीर जो हैं तो इनकी बात जाहिर है जिसके नजदीक अहम होगी तो वही इस बात को मानेगा कि भाई वाकई चेहरे को छुपाना जो है वो जरूरी है। फतुल कदीर की मस्कूरा इबारत से खतरा शहवत की ये तफसील भी मालूम हो गई कि अगरचे बिलफेल कोई शहवानी नियत ना हो, ठीक है, यानी पहले से इरादा करके ना आया हो कि जी मैंने कुछ बुरी हरकत करनी है, ठीक شہوت کی نیت سے دیکھنا ہے، مگر ایسا خیال پیدا ہو جانے کا شک ہو، جب ایسا شک ہو تو نہ صرف اجنبی عورتوں کے بلکہ بے ریش لڑکوں کے چہرے کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ جو ناجائز شہوت کے پیدا ہونا ہے نا، یہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ چونکہ اس کا سبب بنے گا، تو اس وجہ سے یہ سبب بھی حرام ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی چہرے کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ ٹھیک ہے، باقی بدن کے بارے میں تو ڈسکشن ہی نہیں ہو رہی نا، کیونکہ اس کے بارے میں تو 100% پتا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھنے سے مرد کی شہوت بڑھتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ڈسکشن ہو رہی ہے صرف چہرے کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو دیکھنا پھر یعنی علماء نے حرام ہی قرار دیا، اور خیال شہوت یعنی یہ سبب قریب کے درجے میں آئے گا یہ چیز۔ ٹھیک ہے، اور خیال شہوت پیدا ہونے کی تشریح کیا ہے؟ جامع الرموز میں یہ کی ہے کہ نفس میں اس کے قریب ہونے کا میلان پیدا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، جس کے لیے کیا دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ رغبت، رغبت اینڈ میلان۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے مترادف ورڈز ہیں، رغبت اور میلان پیدا ہو جائے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ نفس میں اتنا میلان بھی ظاہر ہے کہ نفس میں اتنا میلان پیدا نہ ہو، یہ چیز تو سلف کے زمانے میں بھی شاذ تھی۔ ٹھیک ہے نا، یعنی ایک شخص عورت کے چہروں کو دیکھ رہا ہے اور اس کے دل کے اندر میلان پیدا نہ ہو، یہ تو ایون اس زمانے میں بھی۔ اسی وجہ سے حدیث میں حضرت فضل، جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے دوسرے بیٹے تھے، عبداللہ ابن عباس اور فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ، تو ان کو ایک عورت کی طرف دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے دوسری طرف پھیر دینا اس کی واضح دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو جی، ویسے تو یہ حجت الوداع کے زمانے کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، کہ حضرت الوداع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے یا برابر والے اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جب یہ ایسے کرتے ہوئے دیکھا تو ان کے چہروں کو پھیر دیا۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کو کچھ لوگ اس لیے بھی دلیل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ جی چہرہ کور کرنا فرض نہیں تھا، ٹھیک ہے، ورنہ اس عورت کا چہرہ بھی کور ہوتا۔ ٹھیک ہے نا، تو اب اس کے بارے میں کیا جواب دیا جا سکتا ہے کہ بھائی حجت الوداع میں تو دور دور سے لوگ آ رہے تھے، ٹھیک ہے، اب اس عورت کا تذکرہ نام کے ساتھ بھی نہیں ہے، تو مطلب یہ کہ کوئی وہ جان پہچان والی عورت نہیں تھی، بلکہ وہ کہیں دور سے آئی ہوگی، جس کے ایسا تو نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہوں نے کوئی اعلان کروایا وہ کہ یہ ساری عورتیں جو ہیں وہ نقاب میں ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ دوسرے علاقے کی عورتیں تھیں، یعنی اس زمانے میں تو ایسے اعلان کا کوئی سسٹم بھی نہیں تھا نا، تو کوئی نیا بندہ باہر سے آئے تو پھر اس کو جب اگر یہ چیز پتہ نہیں لگی ہے، وہ تو جب عورت آئیں گی پھر صحابیات سے ملیں گی، ازواج مطہرات کے پاس جائیں گی، تب ان کو سارے احکامات پتہ لگیں گے۔ ایسے تو نہیں کہ یعنی جس طرح کہ یہ سعودی عرب کے اندر پردے کو نافذ کیا گیا ڈنڈا مار مار کر کے اور چھڑی مار مار کر کے، رائٹ، تو اس زمانے میں ایسے تو نہیں ہوتا تھا نا کہ عورت کوئی نظر آئی کالا برقع کے بغیر کسی اور رنگ کے برقع پہنے میں نظر آئی تو اس کو جو ہے وہ چھڑی مارنی شروع کر دی، کسی کے بال نظر آ گئے تو اس کو چھڑی مارنی شروع کر دی، رائٹ، یہ تو خالی یہیں پر ہوتا تھا نا، یہ اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا نا۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بجائے اس کے کہ اس عورت کو کچھ کہتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے قریب تھا، جو کہ اپنا پرانا تھا، اپنے خاندان کا تھا، اس کو تلقین کر، اس کو یعنی اس کے چہروں کو پھیر دیا۔ ٹھیک ہے، اور پھیر دیا یہ بات ہی اس بات کو کلیئر کرتی ہے، اچھا اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فعل کو دیکھ کر کے، اگر ان عورت نے اس فعل کو دیکھا تھا تو اس فعل سے ان کو حکم کا پتہ لگ گیا ہوگا، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چہرے کو جب دیکھنا منع ہے تو پھر دکھانا بھی تو کوئی اچھی بات نہیں ہوگی نا، ہو سکتا ہے اس کے بعد انہوں نے پردہ کر لیا، یا وہاں سے جانے کے بعد نیکسٹ منزل کے اوپر بیٹھی ہوں وہاں سے انہوں نے پردہ کرنا شروع کر دیا اپنے چہرے کا بھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تفصیل حدیث کے اندر نہیں آئی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تو اس زمانۂ فساد میں کون کہہ سکتا ہے کہ اس خطرے سے خالی۔ ٹھیک ہے، اچھا، شمس الائمہ سرخسی نے اس مسئلے پر مفصل بحث کے بعد لکھا ہے کہ یہ چہرہ اور ہتھیلیوں کی طرف نظر کا جائز ہونا صرف اس صورت میں ہے جبکہ یہ نظر شہوت سے نہ ہو، اور اگر دیکھنے والا جانتا ہے کہ چہرہ دیکھنے سے برے خیالات پیدا ہو سکتے ہیں تو اس کو عورت کی کسی چیز کی طرف بھی نظر کرنا حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے، چاہے چہرہ کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ ایک قزان بات بھی ہو گئی، کیونکہ یہ بندہ جو ہے نا پھر وہ خود فیصلہ کرتا ہے کہ جی اس کے لیے यानी उसके अंदर जो है वो शहवत की ख्यालात, शहवत की चीज़ पैदा हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो अब उसके लिए अगर यानी ऐसा मामला है तो फिर उसके लिए बिल्कुल भी जायज़ नहीं होगा। अब यहाँ पर ये सब देखने की बातें होंगी, दिखाने की बात नहीं हो रही। दिखाना जो कि औरत का फेल होता है, इसके बारे में दीगर अहादीस और दीगर अकवाल है, ठीक है, जो कि यहाँ पर जिक्र नहीं किए इन्होंने, ठीक है। जैसे कि तवाफ के अंदर जो हुक्म आया कि जी चेहरे को कपड़ा ना लगे, ठीक है, तो हजरत जी क्या फरमाते हैं कि भाई तवाफ में इसका जिक्र किया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि चेहरे को कपड़ा लगता था, जबी तो खास तवाफ के अंदर ये हुक्म आया कि चेहरे में कपड़ा ना लगे, ठीक है ना। अगर नहीं लगता था, लोग अपने चेहरों को कवर करते ही नहीं थे, तो फिर इस हुक्म का तुक क्या बनती है, जरूरत क्या बनती है कि चेहरों को कपड़ा ना लगे, ठीक है ना। तो अब उसके अंदर फिर वही आया कि जी आयशा सिद्दीका जो है वो किस तरह करती थी कि जब लोग करीब आते थे तो उसको जो है वो कवर कर लेती थी, और जब लोग दूर होते थे तो उसको कवर नहीं करती थी, ठीक है, या किस तरह से उसको कवर किया होता था। उसकी भी आया कि भाई ऊपर से चादर जो है वो लटका ली कि वो टच ना हो, ठीक है, जैसे कि वो पी कैप वाला जो जो नकाब होता है। बहरहाल खुलासा इस बहस और इख्तलाफ फुकहा का ये है कि इमाम शाफी मालिक अहमद इब्न हम्बल रहिमहुल्लाह ने नौजवान औरत की तरफ देखने को, नजर करने को आदत आमा की बिना पर सबब फितना करार देकर उससे मुतलकन मना कर दिया, ख्वाह वाकई में फितना हो या ना हो, ठीक है। अब फुकहा ने क्या काम करना होता है, फुकहा ने अहकाम लिखने होते हैं, ठीक है। अब ये अहकाम जो होते हैं ये स्टैटिक शक्ल में होते हैं, ठीक है ना, यार यानी ये एक रिकॉर्ड कर लिया होता है उन्होंने कि जी ये हुक्म इस मामले में ऐसा हुक्म होगा, इस मामले में ऐसा हुक्म होगा, ठीक है। अब अलग एक एक बंदे की कैफियत ये फुकहा नहीं लिख सकते, ठीक है ना, एक एक बंदे की। अब ये कैफियत को देख करके अमल उसके मुताबिक करना, नीयत को चेक करते रहना, ये सारी बातें जो हैं ये फुकहा का एरिया नहीं है, बल्कि ये मशायख का एरिया है, सूफिया का ये एरिया है, ठीक है। तो फुकहा ने तो अहकामात को कलमबंद करना होता है ना, तो इस वजह से इन्होंने जो अहकामात कलमबंद किए वो यही थे कि फितने का खतरा हो या ना हो, नौजवान औरत की तरफ नजर करना जो है इसको मुतलकन मना कर दिया कि नहीं, आप नौजवान औरत की तरफ नकली ना करें, नजर ही ना करें, जैसे शरीयत के बहुत से अहकाम में इसकी नजायर मौजूद हैं। मसलन सफर, ठीक है, अब सफर चूंकि आदतन मुशक्कत और मेहनत का सबब होता है, इसलिए खुद सफर ही को मुशक्कत का हुक्म देकर तमाम अहकाम रुख्सत के सफर मुहक्कक होने पर दायर कर दिए, ठीक है। तमाम अहकाम रुख्सत के सफर मुतहक्कक होने पर दायर कर दिए, यानी जब आपका एक सफर शरी डिफाइंड हो गया कि जी आप शरी सफर पर हैं, क्या मतलब शरी सफर का, 48 माइल्स अपने घर से दूर हैं, ठीक है, 48 माइल्स का डिस्टेंस, अब ये तकरीबन 70 या 75 किलोमीटर्स बनता है, ठीक है। तो अगर आप अपने घर से इतना दूर हैं, ठीक है, और ये जो आपका यानी ये दूरी है, तो ये यानी ये आपका फिर शहरी सफर शुरू हो गया ना, तो अब इसके अंदर आपने कसर करनी है, ठीक है। अब उसके अंदर वो भी है कि जी आपका ये जो दूरी है ये 15 दिन तक के लिए हो, ठीक है, तो वो शहरी सफर बन जाता है। तो जब शहरी सफर मुतहक्कक हो गया, ठीक है ना, तो अब जितने रुख्सत के अहकाम है ना सफर के अंदर, वो सारे के सारे आपके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। बेशक जैसे लिख रहे हैं कि ख्वाह किसी शख्स को सफर में कोई भी मुशक्कत ना हो, बल्कि अपने घर से ज्यादा आराम मिले, मगर कसर नमाज और रुख्सत रोजा वगैरह के अहकाम उसको भी शामिल हैं, ठीक है ना। मतलब 15 दिन से कम का आपका वो सफर हो तो फिर क्या होता है कि आप कसर नमाज पढ़ते हैं, जैसे आप मक्का मुकरमा जा रहे हैं। अब मक्का मुकरमा जब हम जाते हैं तो एयर कंडीशन गाड़ी में होते हैं, ठीक है ना, फिर उसके बाद एयर कंडीशन एयरपोर्ट में होते हैं, और वो भी बड़ी आसानी से, बहुत थोड़ा सा आपको चलना पड़ता है, ठीक है ना। फिर आप जो है वो एयरक्राफ्ट भी आपका माशाल्लाह इतना जबरदस्त था कि बिजनेस क्लास में जाएं तो फिर तो और भी ज्यादा मजे होते हैं, ठीक है ना। वैसे भी एयरक्राफ्ट का सफर बहुत ही ज्यादा आसानी का सफर है, आगे भी सब आसानी, फिर उसके बाद आप वहां पर जाकर के जो है वो माशाल्लाह हिल्टन टावर्स के अंदर अगर आप चेक इन कर लेते हैं तो फिर वो तो आपके घर से भी ज्यादा आरामदेह होता है। लेकिन अब आप ये कहें कि नहीं मुझे तो, मैं तो आराम ही आराम में हूँ, इस वजह से मैं नमाज पूरी पढ़ूंगा, ठीक है, तो ये आप ऐसा नहीं कर सकते। چاہے کتنے ہی آرام کیوں نہ ہو. تو اس وجہ سے شرعی سفر متحقق ہونے کے اوپر آپ کے اوپر احکام لگ گئے ہیں. اسی طریقے سے نیند کی حالت میں چونکہ انسان بے خبر ہوتا ہے اور عادتاً ریاح خارج ہو جاتی ہیں, گیس خارج ہونا جس کو کہتے ہیں, اسی لیے خود نیند ہی کو خروج ریح کے قائم مقام قرار دے کر نیند سے وضو ٹوٹ جانے کا حکم دے دیا, خواہ واقعی میں ریح خارج ہوئی ہو یا نہ ہوئی. ٹھیک ہے, تو اب یہ نہیں ہوگا کہ بھئی واقعی گیس خارج ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی, بلکہ اگر نیند ایسی آ گئی جس کے وہ ہوتا ہے نا متقیان ٹیک لگائی ہوئی نیند, کہ اگر پیچھے سے آپ کا ٹیک ہٹا دیا جاتا تو آپ گر جاتے. ٹھیک ہے نا, تو اگر ایسی نیند ہے تو پھر اس نیند ہی کو حنفی فقہ کے اندر ناقض وضو قرار دے دیا, حالانکہ نیند جو ہے وہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے فتنے کا خطرہ ہو یا نہ ہو تو چہرے کی طرف دیکھنا دونوں صورتوں میں فقہا نے ناجائز قرار دے دیا. ٹھیک ہے, اب بات وہی پلٹ کر کے آتی ہے 20ویں صدی کا مسئلہ. ٹھیک ہے, 20ویں صدی کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم فقہا کی نہیں مانتے, ہم فقہا کو امپورٹنس نہیں دیتے کہ بھئی وہ بھی وہ جو ہے نا وہ ہمیں دین کے احکام بتاتے ہیں. ہم یہ جو 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 پوزیشن ہے فقہا کو نہیں دیتے. تو اس وجہ سے جب فقہا کو جب یہ پوزیشن نہیں دیتے تو پھر اس وجہ سے فقہا کی بات بھی نہیں مانتے, بلکہ ہم خود دلیل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, خود جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم خود سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس تو نہ تو کامل انفارمیشن ہوتی ہے اور نہ ہمارے پاس ایسا اخلاص ہوتا ہے جو کہ ان فقہا کے پاس تھا. تو یہاں سے پھر غیر مقلدیت جنم لیتی ہے, اور جب غیر مقلدیت جنم لے لیتی ہے تو پھر یہ دین جو ہے وہ ایک کھلونا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو سارا کا سارا مسئلہ جو ہے وہ تقلید, بات ماننا, اور یہی ہے اصل میں بس پورا کا پورا دین. بات وہی آ جاتی ہے جو کہ سارا جس کو ضرورت پڑ گئی ہے بولنے کی, ہمارے آنے کے بڑے ایسی بات نہیں کرتے ہیں, لیکن سارا جس کو جب واسطہ پڑتا ہے اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ تو سارا بات وہی آتی ہے کہ بھائی اللہ کی تو آواز ہی نہیں آتی, نبی علیہ السلام کی بھی آواز نہیں آتی. ٹھیک ہے, اچھا یہ بات جو ہم کہتے ہیں بظاہر تو یہ بڑی بے ادبی والی بات لگتی ہے, بڑی عجیب بات لگتی ہے, لیکن یہ کہتے کیوں ہیں؟ علماء کی اتباع کروانے کے لیے, علماء کی اطاعت کروانے کے لیے. ٹھیک ہے نا, تو علماء کی اطاعت تو یہ تو یہ کوئی عالم اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ عالم کی اطاعت کرنی چاہیے, عالم سے پوچھ کے چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے چونکہ ہمارے دماغ میں یہ بات آتی نہیں ہے نا کہ کیوں عالم کی اطاعت کرنی چاہیے, تو اس وجہ سے بات کہنی پڑتی ہے کہ بھائی اللہ کی کبھی آواز آئی آپ کے پاس, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کبھی آپ کے پاس آواز آئی؟ تو جو احکام آتے ہیں دین کے وہ سارے کے سارے یہ علماء ہی کے واسطے سے آتے ہیں نا, تو کیوں نہیں مانتے عالم کی, کیوں نہیں مانتے علماء کو؟ ٹھیک ہے, بس وہی بات ہے کہ پہلے جو ہے وہ لوگوں کے بات خود ہی سمجھ میں آ جاتی تھی, اب جو ہے وہ ظاہر ہے کچھ تفصیل کی ضرورت پڑتی ہے, اور وہ تفصیل جو ہے وہ اس زمانے کے اندر یہی کرنی پڑ جاتی ہے. تو یہ سارے احکام جو ہیں یہ سارے علماء کے ہی ڈٹرمن کیے ہوئے ہیں نا. اچھا, اب اس کے اندر وہ بات بھی اپنی جگہ پر رہتی ہے کہ ایکچولی آگے بھی پھر اس کا آ رہا ہے ذکر. تو پڑھتے ہیں کہ مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کے چہرے اور ہتھیلیاں کھولنے کو یہ درجہ نہیں دیا کہ چہرہ کھولنے ہی کو فتنے کا قائم مقام قرار دے. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ قرار نہیں دیا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے, بلکہ حکم اس پر دائر رکھا کہ جہاں فتنہ یعنی عورت کی طرف قریب ہونے کے میلان کا خطرہ یا احتمال ہو وہاں ممنوع ہے, اور جہاں یہ احتمال نہ ہو وہاں جائز ہے. ٹھیک ہے, مگر اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ اس زمانے میں ایسا احتمال نہ ہو یہ بالکل شاذ و نادر ہے, اس لیے متاخرین فقہائے حنفیہ نے بھی بالآخر وہ بھی حکم دے دیا جو آئمہ ثلاثہ نے دیا تھا کہ جوان عورت کے چہرے یا ہتھیلیوں کی طرف بھی نظر ممنوع. یہ گویا کہ اسی طرح کی ایک چیز ہو گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں آنے سے روکنے کو منع کیا تھا لیکن شرائط بیان کر دی تھی. ٹھیک ہے نا, تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما گئے تو وہ شرائط جو تھیں وہ پھر باقاعدہ قائم بھی ہونی شروع ہو گئی, یعنی وہ شرائط جو ہے وہ معاشرے کے اندر, یعنی وہ پہلے تو کبھی ہوتی تھی کبھی نہیں ہوتی تھی, لیکن اب جو ہے وہ باقاعدہ قائم ہونی شروع ہو گئیں. تو جب شرائط قائم ہو گئیں تو پھر صحابہ کرام نے, ازواج مطہرات نے عورتوں کو مسجد میں جانے کو منع کر دیا. ٹھیک ہے, بالکل یہی معاملہ جو ہے وہ یہاں پر بھی, یعنی وہی ماڈل چل رہا ہے. کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے تو شرائط بیان کری تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس زمانے میں شرائط کم قائم ہوتی تھی، لیکن جب متاخرین کا زمانہ آیا تو چونکہ شرائط معاشرے میں کھڑی ہو گئی، یعنی گویا کہ عمارتیں جیسے کھڑی ہو جاتی ہیں نا پرماننٹ، تو وہ کھڑی ہو گئیں، تو جب عمارتیں یعنی شرائط کی عمارتیں کھڑی ہو گئیں تو اب انہوں نے کہا کہ بس ناجائز، ٹھیک ہے نا. تو اس کا حاصل یہ ہوا کہ اب باتفاق ائمہ اربعہ یہ تیسرا درجہ پردے کا ممنوع ہو گیا. پہلے تین تھے یہ کہنے والے کہ چہرے کا پردہ بھی کرنا ضروری ہے، تو اب چاروں ہو گئے، ٹھیک ہے، کہ عورت برقع چادر وغیرہ میں پورے بدن کو چھپا کر مگر صرف چہرہ اور ہتھیلیاں کو کھول کر مردوں کے سامنے آئے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز اب ممنوع ہو گئی. لیکن چونکہ یہ شیعہ جو ہیں یہ آئمہ اربعہ کو تو نہیں مانتے، ان کے تو الگ ہی آئمہ ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے شیعوں کی عورتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لمبی چادر تو لیتی ہیں لیکن چہرہ ان کے یہاں کبھی بھی کور نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اس لیے اب پردے کے صرف پہلے ہی دو درجے رہ گئے، ایک اصل مقصود یعنی عورتوں کا گھروں کے اندر رہنا بلا ضرورت باہر نہ نکلنا، اور دوسرا یعنی برقع وغیرہ کے ساتھ نکلنا ضرورت کی بنا پر، بوقت ضرورت و بقدر ضرورت، ٹھیک ہے، یعنی ضرورت کے وقت باہر نکلنا اور بقدر ضرورت باہر نکلنا. ابھی ضرورت کی ڈیفینیشن جو ہے وہ الگ ہیں کہ بھائی امی سے ملنے جا رہی ہیں، بہن سے ملنے جا رہی ہیں، کسی خاندان کی ایک تقریب ہے اس کے اندر جا رہی ہیں، تو یہ بھی انسان کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، خاندانی تعلقات کو برقرار رکھنا، اور ٹھیک ہے، تو یہ اسپیشلی جب سفر شرعی ہوتا ہے تو اس کے اندر تو محرم کے ساتھ بھی سفر کرنے کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی ہے، لیکن جب سفر شرعی ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر محرم کے ساتھ سفر کرنا، لیکن یہ چیزیں بھی ضرورت کے اندر آ جاتی ہیں، عمرہ، حج کرنا اور جو بھی اس طرح کے دیگر، ڈاکٹر کے پاس جانا یا شیخ کا بیان سننے کے لیے جانا، ٹھیک ہے، یا عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانا، ٹھیک ہے، تو اب یہ ساری چیزیں جو عورت کرے گی گھر سے باہر نکل کر کے تو وہ اس برقعے کے ساتھ کرے گی. اچھا، مسئلہ، پردے کے احکام مذکورہ میں بعض صورتیں مستثنی بھی ہیں، مثلا بعض مرد یعنی محارم پردے سے مستثنی ہیں اور بعض عورتیں مثلا بہت بوڑھی وہ بھی پردے کے عام حکم سے کسی قدر مستثنی ہیں. ان کی تفصیل کچھ تو سورہ نور میں گزر چکی ہے اور کچھ آگے سورہ احزاب کی ان آیات میں آئے گی جن میں یہ استثناء مذکور ہے. پردے کے مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر اپنے رسالے تفصیل الخطاب فی احکام الحجاب کا کچھ خلاصہ یہاں لکھ دیا ہے جو عوام کے لیے کافی ہے، پوری تحقیق مطلوب ہو تو وہ رسالہ مذکورہ میں دیکھی جا سکتی ہے. یہ رسالہ احکام القرآن تفسیر سورہ احزاب میں شامل ہو چکا ہے اور وہ چونکہ عربی زبان میں ہے اس وجہ سے علماء کرام ہی اس کو پڑھ سکتے ہیں. پتہ نہیں اب اس کا ٹرانسلیشن شائع ہوا ہے یا نہیں، بہرحال ہم عوام الناس میں سے ہیں اور میرے خیال میں اتنی ہی تفصیل جو ہم نے پڑھ لی ہے تو یہی ہمارے لیے انشاءاللہ کافی رہے گی. باقی علماء ہیں جن سے کہ ہم وقت کے ضرورت کے موقع پر پوچھ سکتے ہیں. اچھا، اب یہ ایک بات رہ گئی تھی جو کہ میں نے ایکچولی نوٹس میں لکھی تھی، وہ یہ تھی کہ یہ جو پیچھے بات ہوئی نا، علامہ شامی نے رد المختار کتاب الکراہیہ میں جو فرمایا تھا کہ کسی حاجت شریعہ کی وجہ سے نظر، اچھا یہ ہم نے پڑھا ہی نہیں کیا، ہاں ایکچولی ہم نے اسکپ ہی کر دیا، کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے کہ اگر شہوت کا خطرہ یا شک ہو تو عورت کے چہرے کی طرف نظر ممنوع ہوگی، کیونکہ نظر کا حلال ہونا شہوت نہ ہونے کے ساتھ مشروط ہے، اور جب یہ شرط نہ ہو تو حرام ہے، اور یہ بات سلف کے زمانے میں تھی، لیکن ہمارے زمانے میں تو مطلقاً عورت کی طرف نظر ممنوع ہے. ہمارے زمانے سے کیا مراد؟ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ جو تھا یہ اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ تھا، ٹھیک ہے، اورنگزیب عالمگیر کا دور، اور یہ ان کا تقریباً ایک ہی دور تھا. تو اس زمانے کی بات کریں، یعنی آج سے 400 سال 300 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہمارے زمانے میں تو مطلقاً عورت کی طرف نظر ممنوع ہے، مگر یہ کہ کسی حاجت شرعیہ کی وجہ سے نظر کرنی پڑے، جیسے قاضی یا شاہد، ٹھیک ہے، یعنی گواہی دینے والا کہ جی ہاں یہ عورت جو تھی وہ اس جرم میں شریک تھی، یا یہ عورت جو تھی اس کے ساتھ یہ جرم کیا گیا، ٹھیک ہے، تو وہ جو گواہی دینے والا گواہ ہوتا ہے تو اس کو یہ چیز کنفرم کرنی ضرور जरूरी है ताकि सजा मिल सके, ठीक है ना। अब सजा जो है वो तो शक की बुनियाद पर तो नहीं दी जा सकती ना, इस वजह से उसको कंफर्म करने के लिए उस औरत के चेहरे को देखना पड़ेगा, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो सिक्योरिटी चेक के लिए, ठीक है, जब आपको चेहरा उनको देखना होता है ना, जैसे कि स्पेशली इमिग्रेशन के ऊपर, ठीक है, या और किसी ऐसे सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन के ऊपर कि जहां पर के ये अंदर बंदा कौन है, इस बुर्के के अंदर औरत ही है कि या मर्द कोई बुर्के के अंदर छुप करके जा रहा है, ठीक है, या ये कि तो ऐसे मौके के ऊपर जो देखना होगा तो उसके बारे में लिखा कि काजी या शाहिद जिनको किसी मामले में उस औरत के मुतालिक शहादत या फैसला देना पड़े, और शुरूत सलात में फरमाया कि जवान औरत को अजनबी मर्दों के सामने चेहरा खोलना ममनू है, ना इसलिए कि ये औरत है बल्कि फितने के खौफ से, ठीक है। तो चेहरा खोलना ममनू इसलिए नहीं है कि ये सतर है, बल्कि इसलिए ममनू है क्योंकि इससे फितना होता है, ठीक है। अब एक बात जो कि हमारे रोज़मर्रा के, के, के मामले के अंदर पेश आती है वो ये है कि जी ये जो यानी जब हम सफ़र करते हैं या किसी यानी सिक्योरिटी चेक की वजह से खोलना पड़ता है तो उसके अंदर जो है ना अगर तो खोले बगैर काम चल जाए, ठीक है, तो चला लेना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी औरत को तलब कर सकें, ठीक है, कि भाई कोई औरत आए जो कि मेरी आईडी चेक कर सके, ठीक है, यानी मेरे पासपोर्ट के ऊपर तस्वीर और मेरी असल शक्ल को मैच कर सके, तो औरत अगर अवेलेबल है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उसी वाले लाइन में खड़ी हो जहां पर के आगे औरत है बैठी। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा होता है, अमेरिका के अंदर भी ऐसा होता है कि कुछ इमिग्रेशन काउंटर्स के ऊपर औरतें बैठी होती हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि जी औरत अवेलेबल ही नहीं होती, ठीक है ना, तो उस वक्त जो है ना फिर शरीयत का ये हुक्म इस्तेमाल करना चाहिए कि ऐसे मौके के ऊपर चूंकि शरीयत ने जायज़ करार दिया है तो उस वक्त ये कर सकते हैं कि जी अपने साथ जो है वो कोई कार्ड वगैरह या कोई ऐसी चीज़ कोई फोल्डर कोई ऐसा रख लें कि जी निकाब जो है वो खोलें, एक तरफ से वो जो खुला हुआ निकाब है वो बन जाएगा हिजाब और दूसरी तरफ जो है ना वो अपने हाथ से कोई फोल्डर या ऐसी कोई चीज पकड़ लें कि जिससे कि आसपास के खड़े हुए जो लोग हैं वो ना देख सकें, लेकिन जिस ऑफिसर ने आपको देखना है सिर्फ वही देख सके, ठीक है। तो इस तरह से वेरी क्विकली, और वो लोग कोई अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ऐसे बुरे हालात नहीं हमने देखे कि वो कोई आपके साथ खेल तमाशा करना शुरू हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये अकेली औरत के साथ कर भी लेते हैं लोग, ठीक है, कि वो फिर आपके साथ कुछ और ही यानी जरा तमाशा करना शुरू कर दें, जरा आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दें, लेकिन जब मर्द को साथ देखते हैं खुसूसन अगर मर्द भी जो है वो यानी बाशरा हो, ठीक है, सुन्नत के ऊपर अमल करने वाला हो, तो फिर वो और भी ज्यादा एहतियात करते हैं, ठीक है, बहुत ही क्विकली जो है वो देख करके फिर बस नजर झुका लेते हैं अपना काम करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो वो भी फिर रिस्क नहीं लेते हैं मामले में, ठीक है। तो इस तरह के सिचुएशंस के अंदर जो है वो चेहरा दिखाना जो है वो जायज होता है। अच्छा, अब इसी का जो है वो दूसरा जो पहलू निकलता है वो क्या है कि ये जो लोग होते हैं ना सिक्योरिटी चेक के ऊपर जो बैठे होते हैं, ठीक है ना, इन लोगों के साथ आपका कितनी देर के लिए वास्ता पड़ता है, बहुत थोड़ी देर के लिए वास्ता पड़ता है, फिर आप आगे चले जाते हैं, ठीक है ना, फिर आपकी इनसे दोबारा मुलाकात नहीं होती है, ठीक है ना, ये प्रोफेशनल एक रिलेशनशिप होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, खत्म हो जाती है, फिर ना वो आपको जानते हैं ना आप उनको जानते हैं। लेकिन घरों में तो ऐसा नहीं होता ना, फैमिली में तो ऐसा नहीं होता ना, ठीक है, फैमिली के अंदर तो जिन लोगों के साथ आपका वास्ता पड़ता है गैर महरमों के साथ, तो उनके साथ तो फिर बार बार वास्ता पड़ता है, उनको तो आपका पता होता है कि जी आप किस घर की रहने वाली हैं, आप कौन सी हैं, यानी क्या हैं आप, राइट। तो वो जब आपको देख लेते हैं ना तो फिर वो देखना एक अलग कॉन्सिक्वेंस रखता है, अलग नतीजे रखता है, और एयरपोर्ट के ऊपर या किसी ऐसे जगह के ऊपर किसी का देख लेना वो एक अलग हैसियत रखता है। घर वालों के साथ देखना जो है ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का सबब बन सकता है, लॉन्ग टर्म फीलिंग्स का सबब बन सकता है, ठीक है ना, और इसकी इंडिकेशन हमें हदीस से भी मिलती है, ठीक है ना। हदीस में कौन सी हदीस है जिससे ये बात पता लगती है, इसमें नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देवर तो मौत है, राइट, देवर तो मौत है, क्यों भी मौत है, देवर है? अपने घर का फर्द है, भाई का जो है वो अपने शौहर का भाई है, राइट, तो क्यों मौत है, इसलिए कि देवर के साथ बहुत करीबी ताल्लुक होता है। करीबी ताल्लुक से मुराद कोई रिश्तेदारी करीब नहीं होती कोई, बल्कि देवर के साथ मिलना जुलना यानी बहुत करीबी रहता है, राइट। तो वो जब देख लेता है ना, तो फिर उसके देखने के बाद शैतान के लिए बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है शैतान के लिए कि फिर इसके जरिए से ना कुछ गुनाह करवाए, कोई ऐसे जज्बात पैदा करे, कोई ऐसा मामला पैदा करे कि जिसकी वजह से जो है वो या तो गुनाह में मुब्तला हो, या ये कि जैसे कि पिछले हफ्ते के बयान के अंदर बात हुई थी कि मियाँ बीवी के दरमियान तफरका पैदा हो, ठीक है, शोहर के दिल में डाउट आ जाए, ठीक है, या ये कि ये आ जाए बीवी के दिल में कि हाँ भाई देखो तो मेरा शोहर जो है वो तो इतना बेवकूफ है, वो उसको तो कोई काम करना नहीं आता, लेकिन जो देवर साहब है वो कितने अच्छे हैं, वो कितना अच्छे से काम किया करते हैं, कितना सलीका आता है उनको, कितना जो है वो मामला फहम है, हालांकि ये शोहर साहब है इनको तो कुछ भी नहीं आता। और ये उमूमन बीवियों के शोहर के मामले में ऐसे ही मामला, ऐसे ही रवैया होता है ना, ठीक है। तो रवैया तो चलो होते ही है हर बीवी का अपने शोहर के बारे में, इल्ला माशाल्लाह, सवाय इसके कि जी जैसे कल पढ़ा था नबी अलैहिस्सलाम जैसा कोई शोहर हो, नबी अलैहिस्सलाम के यानी के रास्ते पे चलने वाला कोई शोहर हो, तो फिर उसकी तादीम बीवी के दिल में आ जाती है। लेकिन ऐसे तो लोग शाज़ो नादर होते हैं ना, तो हर शोहर जो होता है वो बीवी के लिए एक कमतर चीज ही होता है। तो शोहर के बारे में तो ये रवैया तकरीबन हर बीवी के दिल में होता है, लेकिन अगर उसको कोई ऑल्टरनेटिव मिल जाए कि जो कि शोहर से ज्यादा बेहतर हो, ठीक है, तो अब शैतान जो है ना इसको बीवी के दिल में इस तरह के ख्यालात डालने का सबब बनाता है। और ये ख्यालात जो है वो अगर कोई फिजिकल गुनाह का सबब ना भी बने, फिर भी ये बीवी शोहर के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं ना इनको खराब कर देने का सबब बनता है, ठीक है। तो इस वजह से जितना करीबी रिश्तेदारी होगी ना, पर्दा उतना ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। किसी और कोई सवाल है तो आप पूछ लें, वरना क्लास आज खत्म करते हैं। अब आइंदा की क्लासों के लिए एक तो आपने ये आयात भी तैयार करनी है तर्जुमे के लिए, तो तर्जुमे की आयात जो अब बनेंगी ये तो सिर्फ एक आयत है, और इस एक आयत के बाद फिर काफी सारी तफसील है, तो तफसील हम पढ़ते रहेंगे, लेकिन आप लोग फिर भी तैयार कर लें आयत नंबर 56 से लेकर के 62 तक, ठीक है, 56 से 62 तक जो अगली ट्रांसलेशन है वो, और आप इस 62 तक हो गई, फिर उसके बाद फिर 63 से लेकर के 63 से 73, हाँ 73 ये फिर उसके बाद वाली हो गई, और 73 के ऊपर ये सूरत खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा ये तो हो गई, मैं आपके ये पढ़ता हूँ, उससे पहले उसूल फिका की जो इबारत है वो भी, फिर अभी जो इस्तआरा वाला वाली है ना, फसल अब शुरू हो रही है, तरीके इस्तआरा का बयान पेज नंबर 117 के ऊपर, ये या तो मैं आप लोगों को पहले से बता चुका हूँ, अगर बता चुका हूँ तो बस उतनी बात तैयार करें, वरना ये कि 117 पे तो बहुत थोड़ी सी इबारत है, 120 के ऊपर काफी लंबी इबारत है। जिसकी भी बारी है तो वो फिलहाल सिर्फ 117 वाली इबारत पढ़ ले, उसकी तशरीह पूरी मुकम्मल करने के बाद फिर अगली क्लास में फिर वो 120 वाली इबारत तैयार कर ले, ठीक है। अच्छा, अगर भाभी पर्दा ना करती हो तो क्या देवर को उनसे पर्दा करना चाहिए या नहीं? भाई देवर ने अपनी निगाहों की हिफाजत करनी है ना, भाभी अपने अमल की जिम्मेदार है, लेकिन देवर से तो उसके अमल का हिसाब होगा, भाभी के अमल का तो नहीं हिसाब होगा ना, तो देवर को फोर्स पर्दा करना है, ठीक है। बल्कि हमारे हजरत तो उनके अल्फाज जो है ना वो याद रखने चाहिए, हजरत अपने सालिकीन को खुलफा को क्या फरमाते हैं कि औरतों ने हमसे पर्दा नहीं करना, ठीक है, औरतों ने हमसे पर्दा नहीं करना, क्योंकि आजकल का मामला ही ऐसा है, औरतों ने तो पर्दा वर्दा करना नहीं होता, बल्कि हमने औरतों से पर्दा करना है, ठीक है ना, यानी हमने अपनी हिफाजत करनी है, ये नहीं कि वो क्यों नहीं पर्दा करती तो मैं तो देखूंगा उसको, मैं तो उसके साथ जो है वो ऐसे ही रहूंगा जैसे कि एक बेपर्दा औरत के साथ रहा, नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि जी आप अपने आप को बचाएं, आप उसके साथ ऐसा मामला करें कि वो پردہ کرے نہ کرے اس کا مسئلہ ہے. بہرحال تو ایسے میں یہ کہنا چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اور بھابھی کے ساتھ جو ہے نا وہ بے تکلفی کو ختم کر دے. ٹھیک ہے, یہ بے تکلفی والے جو جو ہم نے چٹکلے پالے ہوئے ہیں گھروں کے اندر, تو ان چٹکلوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہوتا ہے. اور اس کے اندر رکاوٹ کون بنتی ہیں؟ سب سے پہلی رکاوٹ جو ہوتی ہے نا وہ بھابھی نہیں بنتی, سب سے پہلی رکاوٹ انفارچونیٹلی اماں بنتی ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اماں کا کیا زندگی کا مقصد ہوتا ہے کہ محبت و پیار کے ساتھ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, اب وہ محبت و پیار بیچارے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ محبت و پیار کا مطلب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ جی اصل محبت اور اصل پیار کیا چیز ہوا کرتی ہے. تو وہ بیچاری گھرانے میں محبت و پیار کے چکر میں جو ہے نا وہ اپنے بیٹے اور بہو کے درمیان ہی جو ہے مسئلہ خراب کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, کم علمی کی وجہ سے ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اماں کا ادب اپنی جگہ پر وہ تو کرنا ہی ہے, اماں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے, لیکن اطاعت ایک الگ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اطاعت جو ہوتی ہے وہ تو مشروط ہوتی ہے, اللہ کی ہوتی ہے, اللہ کے رسول کی ہوتی ہے, اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو سمجھانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی اطاعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میرا یہ سب ہے, یہ خیر تفصیل ہو جائے گی. چھوڑیں, کوئی اور سوال ہے کسی کے پاس؟ اپنی بہنوں کو پردے کی ترغیب دے سکتے ہیں؟ ہاں, ترغیب تو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں, اصلاح کرنا یعنی وہ ایک الگ چیز ہے کہ آپ دوسروں کی اصلاح نہیں کر سکتے انلیس کہ آپ مصلح کے درجے پر. ٹھیک ہے, تو اگر آپ ماں ہیں تو آپ مصلح کے درجے پر ہیں, بچوں کی اصلاح کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا, اگر آپ شوہر ہیں تو آپ پھر جو شوہر کی اصلاح کرنے کا طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا تو آپ اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے اپنی بیویوں کی اصلاح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ مصلح کے درجے پر ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ظاہر ہے طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, بچوں کی اصلاح الگ طریقے سے کی جاتی ہے, بیوی کی اصلاح الگ طریقے سے کی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ, لیکن اگر آپ مصلح کے درجے پر فائز نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, تو پھر اصلاح نہیں کی جاتی, بلکہ پھر آپ ترغیب دیتے ہیں, دعا کرتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ترغیب ڈیفینیٹلی اپنی بیوی اپنی بہنوں کو کیوں نہیں دی جا سکتی, ان کو تو زیادہ دینی چاہیے کہ ان سے زیادہ محبت کا تعلق ہوتا ہے. اچھا, یہ جو ترغیب والا معاملہ ہے نا, تو اس میں ایک یہ جو مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو چیزیں لکھی ہیں نا, تو یہ استعمال کی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا, اگر آپ یعنی کسی اور طریقے سے وہ بات نہ سمجھ پا رہی ہوں, تو یہ جو کچھ پیجز ہیں نا احکام حجاب کی تاریخ, نزول حجاب کی تاریخ, پیج نمبر 209, ٹھیک ہے, 209 210, ٹھیک ہے, 212, ٹھیک ہے نا, یہ تین پیجز جو ہے نا, یہ تین پیجز ہمارے معاشرے میں جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں نا, ان مس انڈرسٹینڈنگز کو یہ ایڈریس کرتے ہیں. پیج نمبر 209 10 اینڈ 12, 11 کو آپ سکپ کر سکتی ہیں اگر آپ چاہیں کہ جی ایک پیج اگر کم ہو جائے تو آسانی ہو جائے گی ان کے لیے پڑھنا, ورنہ تو چاروں پیجز. ٹھیک ہے, تو چاروں پیجز ہی اگر پڑھ لیں تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن اگر کمی کرنا چاہتی ہیں تو 11 کو نکال سکتے ہیں اور صرف 12. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے ہاں دینداری تو آپ کو پتہ ہی ہے, ماشاء اللہ ہر بندہ ہی دیندار ہے. ٹھیک ہے, تو اکثر گھرانوں کے اندر خوب ساری دینداریاں آ چکی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ دینداری جو ہے نا وہ دنیا داری اور گناہ کے ساتھ ساتھ مکس اپ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے عورتیں جو ہیں وہ پردہ کرتی ہیں, برقع بھی پہن لیتی ہیں باہر نکل کر کے, گھر میں نہیں کرتی. اور گھر میں جو ہے وہ جو رشتے دار ہوتے ہیں, پارٹیاں ہوتی ہیں, دعوتیں ہوتی ہیں خاندانی, تو اس کے اندر وہی مکس گیدرنگ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہی جو ہے وہ یعنی اچھا, اب یہ چیز مکس گیدرنگز والے مسئلے جو ہیں جب بڑھتے ہیں تو اولادیں پھر کہتی ہیں کہ ہم نے کوئی ایجوکیشن کے اندر جانا, آپ کیوں خواہ مخواہ ہمارے ہاتھوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. اچھا, گھر کے اندر جو ہے وہ آپ کو رہتی ہیں. ٹھیک ہے نا, مرد اور عورت جو نامحرم ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مزے سے بیٹھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, مزے سے جو ہے وہ بے پردگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہیں کہ جی ہم ایسے کالجز کے اندر نہ جائیں کہ جہاں پر کہ کوئی ایجوکیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب ظاہر ہے پھر وہ بیٹیاں بھی جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ بھائی ہم بھی جائیں گے, اب ماں باپ ان کو نہیں روک پاتے ہیں. ٹھیک ہے, حالانکہ ماں باپ جو ہیں وہ انہوں نے کیا اصول بنایا ہوا ہوتا ہے, گھر کے اندر بے پردگی, گھر کے باہر پردہ. ٹھیک ہے, لیکن جو اولادیں ہوتی ہیں پھر وہ نیکسٹ سٹیپ پہ جانا چاہتی ہیں, وہ پھر اس کو ایک نئے لیول پہ لے جائیں. وہ کہتی ہیں نہیں جی, اگر گھر کے اندر بے پردگی تو گھر کے باہر بھی بے پردگی. ٹھیک ठीक है, तो फिर वो कहती हैं भाई हम भी जाएंगे, हम भी पेपर दे करेंगे, कर लो जो करना है। ठीक है, ये सब अहकाम अपनी बच्चियों को किस लेवल पर समझाएं या सिखाएं, मतलब किस लेवल से आप क्या बता दें, किस एज या किस अंदाज, किस एज पर समझाएं या किस अंदाज में समझाएं, किस अंदाज से समझाएं उनको। समझाने के लिए जो है ना, वो आप ना इनको यानी रूखी सूखी फिका के तौर पर ना समझाएं। रूखी सूखी फिका जो होती है ना, जिसको ड्राई यानी फिकी अहकाम होते हैं, ठीक है ना, उसके तौर पर बच्चियों को समझाने के बजाय जो है उनके अंदर यानी अहमियत को उजागर करना, कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी करना ये असल अहम चीज है। इससे जो है वो हमारी दुनिया की जिंदगी भी बहुत खुशगवार हो जाती है और आखिरत की जिंदगी भी खुशगवार होगी। ठीक है, तो ये अंदाज जो है ना, इसको जिसको ईमानी अंदाज कहते हैं, ठीक है भाई, अहमियत इस चीज की ज्यादा है। और अपनी दोस्तों के साथ थोड़ा हल्ला गुल्ला कर लेना, फन कर लेना, ठीक है ना, हंसी मजाक कर लेना, ठीक है, इससे जो आपको खुशी मिलती है ना, ये खुशी जो होती है वो बहुत टेम्पोरारीली होती है, बहुत टेम्पररी खुशी होती है, इसको हम अपनी जिंदगी का मकसूद नहीं बना सकते कि इसके अंदर ही जो है वो ऐसे लग जाए कि जो है वो हमारी दुनिया की जिंदगी जो आप जो के यानी जो के यानी असल लॉन्ग टर्म जिंदगी है दुनिया की, ठीक है, तो वो भी खराब हो जाए और हमारी आखिरत जो है वो भी खराब हो जाए, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ना इस अंदाज में देखिए, बच्चियां जो होती हैं ना, जब नेक माँ बाप यानी माँ बाप जब पर्दा कर रहे होते हैं और वो यानी अब्यूज नहीं कर रहे होते हैं, इस तरह की हरकतें नहीं कर रहे होते हैं कि घर में पर्दा नहीं करते, बाहर पर्दा करते हैं, राइट, तो बच्चियां जो होती हैं ना वो माँ बाप को कॉपी करती हैं, ठीक है ना, वो माँ बाप बच्चियां नहीं खाली बच्चे भी, सही है, बच्चे कॉपी करते हैं, ठीक है, लेकिन कौन सी चीज उनको इस कॉपी करने से रोकना शुरू हो जाती है, कौन सी चीज रोकना शुरू हो जाती है, वो यही चीज होती है कि जब वो दूसरी बच्चियों के साथ उठना बैठना शुरू करती है ना, तो वो दूसरी बच्चियां जो है ना वो इनको तंग करना शुरू करती हैं, वो इनको छेड़ना शुरू करती हैं, इनके माँ बाप के दीन के खिलाफ इनको उभारना शुरू करती हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से जो दूसरी बच्चियां होती हैं ना, जिनको इनकी सहेलियां कहा जाता है, ये वजह बनती हैं माँ बाप के दीन से दूर होने की या उस दीन को मुसीबत समझने की, ये वजह बनती हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनके साथ जो इनकी थोड़ी सी तफरी होती है ना, इस तफरी को इन बच्चियों की निगाहों में छोटा बना के पेश करना, ठीक है ना, इनकी अहमियत को कम करना, इनको इस तफरी को डिमिनिश करना, ठीक है, इस तफरी को डाउन प्ले करना, समझ रही है, डाउन प्ले करना, ठीक है। देखें, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो के मदरसे मदरसे जा रहे होते हैं, लेकिन मदरसे के अंदर जो बच्चियां होती हैं या बच्चे होते हैं वो यानी वही बस मारे बांधे के वहां पर आए हुए होते हैं, तो अब वो बच्चे जो है ना वो किसी नेक बच्ची के पीछे पड़ जाते हैं, वो बच्चियां नेक बच्ची के पीछे पड़ जाती हैं, और उनके असर की वजह से ये बच्ची बेहतरीन घर के माहौल के बावजूद ये निकाब के खिलाफ हो जाती है, ये निकाब नहीं करना चाहती, ठीक है ना, स्कूल जाती है बच्ची, स्कूल की बच्चियों के प्रेशर में आकर के ये निकाब नहीं करना चाहती, ठीक है। वाइसिस के अंदर ये चीजें बड़ी आम है, वाइसिस के अंदर जो कौम आती है वो कौम जो है वो यानी इंतहाई एंटी रिलीजन आती है, इल्ला माशाल्लाह, चंद लोगों के अलावा लोग एंटी रिलीजियस हैं। आपको पता है ना कि एक रिलीजियस टीचर के यानी इंटरव्यू के अंदर क्या हुआ कि उस टीचर के रिलीजियस एटीट्यूड को देख करके 8 में से 7 लोगों ने उसके खिलाफ वोट दिया, ठीक है, 8 में से 7 ने उसके खिलाफ वोट दिया, क्यों, इसलिए कि उस टीचर ने कुछ दीनी रुझानात अपने जाहिर कर दिए थे, ठीक है ना, सिर्फ एक अल्लाह के बंदे ने उसको सपोर्ट किया, 7 ने उसके खिलाफ, क्या मतलब है इसका कि 7 लोग जो हैं वो एंटी रिलीजियस हो चुके हैं, ठीक है ना। तो अब ऐसे माहौल में जब आपकी बच्ची जाएगी तो वो आपके घर के माहौल के साथ उसकी यानी नहीं रह सकेगी, ठीक है ना। तो इस वजह से ये जो चीजें जो ये जो छोटी मोटी ये जो जो तफरीहात होती है ना बच्चों की, तो उन तफरीहात को जो है ना ये करें कि बजाय इसके अपने स्कूल की कॉलीग्स के साथ वो ये तफरियात करें, उनको जो तफरी करनी है वो आपके साथ करें, ठीक है ना। वो आपके घर वाले जो है वो तफरी के लिए निकले, अबू के साथ तफरी करें, अम्मी के साथ तफरी करें, अपने भाई के साथ तफरी करें, अपने राइट नेकों के साथ तफरी करें, जिनकी प्रायोरिटीज जो है वो हिजाब हो, जिनकी प्रायोरिटीज जो है वो आखरत हो, ठीक है, दीन हो, उन लोगों के साथ अगर ये तफरी करेंगे ना, ये नहीं जम जम सकेंगे दीन के ऊपर, ठीक है ना, ये दीन पर नहीं जम सकेंगे, ठीक है ना। इंसान असर लेता है अपने माहौल से, और औरत ये और भी ज्यादा असर लेती है मर्दों के मुकाबले में, और भी ज्यादा असर लेती है, ठीक है। इसी वजह से तो हमारे मशायख जो है वो जो मशहूर है कि जी औरतों की तालीम के खिलाफ हैं, तो क्यों है खिलाफ, ठीक है, इसीलिए खिलाफ है क्योंकि आप जब उनको ऐसे इंस्टीट्यूशन भेजते हैं ऐसे लोगों के साथ जिनको आप नहीं जानते हैं, वो फौरन असर कबूल करती है, ठीक है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह की तो किताब के मैंने एक्सपर्ट एक्सेप्ट आपको भेजे हुए हैं ना, मतलब बिल्कुल क्लियर उन्होंने बात लिखी हुई है, और यही हकीकत है आपके सामने, ये वाज हकीकत है, ठीक है। तो चले इसके ऊपर क्लास खत्म करते हैं, टाइम हो चुका है। मेरी क्लास में 20 बच्चियों में से सिर्फ 2 बच्चियां हिजाब पहनती हैं, जी बेशक, यही यही हमारा मामला है, ठीक है। पाकिस्तानी ना माशाल्लाह, फुल पाकिस्तानी इंटरनेशनल, अभी हम पाकिस्तान में देख कर क्या आ रहे हैं सारी चीजें। अगर फैमिली में भी यही सिचुएशन हो, कोई भी पर्दा ना करता हो, बस आपने फैमिली से कट के रहना है, बच के रहना है, और आपने दावत और तबलीग की जो मेहनत है ना वो खूब करनी है फैमिली के अंदर, ठीक है ना। तो जब आप मेहनत करेंगे ना तो फिर वो आपसे बच के रहना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी चूंकि हम मेहनत नहीं करते ना दावत की मेहनत, तो इस वजह से ना हमें उनसे बच के रहना पड़ता है। जब आप ऑन द कहते हैं ना ऑन द ऑफेंसिव आ जाएंगे, आप जो है वो क्या कहते हैं क्रिकेट के अंदर जो टर्म होती है फ्रंट फुट के ऊपर खेलना, ठीक है ना, फ्रंट फुट के ऊपर खेलने को इसी को कहते हैं ना कि जी आप ऑफेंसिव पे आ जाएंगे तो फिर वो डिफेंसिव पे चले जाएंगे, ठीक है ना। हम चूंकि हम डिफेंसिव पे रहते हैं तो फिर वो ऑफेंसिव पे रहते हैं, ठीक है। जब आप दाई नहीं बनेंगे तो फिर आपको मदऊ बनना पड़ेगा, तो हम क्यों मदऊ बने फिर रहे हैं, इसलिए कि हम दाई नहीं है, ठीक है ना। तो दाई बन के तो देखे ना जरा, फिर देखिएगा वो कैसे फिर मदऊ बनते हैं, अल्लाह ताला रोग पैदा कर देता है इन लोगों के दिलों में, ठीक है। तो अपना काम करें, फिर अल्लाह ताला का काम देखें कि वो कैसे करता है। धन्यवाद।